अन्याभिलाषिता शून्यम, इस श्लोक की चर्चा चल रही थी कल। आपने श्लोक को कंठस्थ किया है? कितने भक्तों ने कंठस्थ किया है, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा। तो फिर से दो बार इस श्लोक को आज कहेंगे हम। मैं कहूंगा, फिर आप कहिए, फिर आगे विश्लेषण जारी रखेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्माद्यन वृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्माद्यन वृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। तो हम ये सुन चुके हैं कि ये श्लोक श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कहते हैं इस श्लोक को, कल बताए थे हम, परिभाषा सूत्र। तो परिभाषा सूत्र क्या होता है? परिभाषा सूत्र ग्रंथ की पहचान, ग्रंथ का आधार। तो हर एक ग्रंथ में एक परिभाषा सूत्र होना चाहिए, जिससे हम जान सकते हैं कि ये ग्रंथ का आधार क्या है। तो ये श्लोक है, हम कल सुन चुके हैं कि भक्ति ये एक प्रकार का अनुशीलन है, और अनुशीलन का मतलब भी हम देख चुके हैं, शील। शील धातु का मतलब है कि तरह तरह की सेवा करना, भजन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना इत्यादि। इसका मतलब है कि भक्ति निष्क्रिय नहीं है। भक्ति में तरह तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं भक्त को, लेकिन ये क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, इसलिए ये शब्द अनु महत्वपूर्ण है। अनु का मतलब है न केवल कि हम इसे बारंबार करते रहें, निरंतर करते रहें, रुकावट नहीं लाएं इसमें, लेकिन अनु शब्द का ये भी अर्थ है कि हम पीछे पीछे जाएं, अर्थात हम पद चिन्हों में चलें। तो किन के पद चिन्हों में चलें? सद्गुरु के और वैष्णवों के। तो इसलिए ये अनुशीलनम होता है, और जब ये श्री कृष्ण के साथ मिलाया जाता है शब्द को, अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम, तो इस समय हम ये जानते हैं कि ये भजन, ये सेवा, ध्यान, कार्य जो भी है, ये कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो हम कल सुन चुके हैं कि कृष्ण का तात्पर्य क्या है, यहां पर इस संदर्भ में कृष्ण का तात्पर्य क्या है, बताइए। बहुत अच्छा, श्री कृष्ण, उनके स्वांश और उनके शुद्ध भक्त, ये तीनों ही इस एक शब्द में सम्मिलित हैं, कृष्ण। तो जब हम श्री कृष्ण कहते हैं, शुद्ध भक्त भी इसमें उपस्थित हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना ये भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो भी कृष्ण से संबंधित है वो महत्वपूर्ण है। कल हम कुरुक्षेत्र की चर्चा भी कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र का महत्व क्या है, कि कृष्ण भगवान वहां पर युद्ध भूमि पर थे, इसलिए कुरुक्षेत्र का महत्व है। नहीं तो रणभूमि तो कई हैं दुनिया में, इसलिए अनुशीलनम, कृष्णानुशीलनम। तो यहां क्या लिखा गया है, कृष्णानुशीलनम, नीचे यह कार्य वह कार्य जो आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, यह भौतिक कार्य नहीं है। यह तात्पर्य है इस वाक्य का कि कृष्ण अनुशीलनम यह भौतिक कार्य कलाप नहीं है, यह भौतिक शक्ति के क्षेत्र में नहीं है, यह दिव्य शक्ति है, भगवान के दिव्य प्रकृति के अधीन है। इसलिए यहां पर अपने ग्रंथों में देखिए, कृष्णदास श्री रूप गोस्वामी यहां कहते हैं कि ये कृष्ण भावना का अनुशीलन जो है ये भौतिक नहीं है। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीन प्रकार की शक्तियां हैं, भौतिक, आध्यात्मिक और जीव, जीव तत्व, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति जो बीच में है, तट में है। जो भौतिक जगत है वो किसका प्राकट्य है? भौतिक शक्ति का, बहिरंगा शक्ति का। और जो वैकुंठ जगत है वो किस शक्ति का प्राकट्य है? अंतरंगा शक्ति का। और जीव किस शक्ति के प्राकट्य है? तटस्था शक्ति के। तो ये तीन प्रकार के भगवान की शक्ति हैं। और जब जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन होकर कार्य करते हैं तो वो कर्म कहलाते हैं, साधारण शब्दों में कर्म। लेकिन जब वही जीव अब कृष्णानुशीलनम करते हैं, श्री कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करते हैं, तो ये भौतिक शक्ति के अधीन नहीं होता, बल्कि ये आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत होता है। ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं। तो बताइए भगवद गीता का कौन सा श्लोक है जो इस बात को सिद्ध करता है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। फिर आगे बोलिए, भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो महात्मानस्तु माम पार्थ, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो महात्मा लोग हैं वो कौन है? केवल किसी को महात्मा कहने से वो महात्मा नहीं बनता। महात्मा वो व्यक्ति है जिसने दैवी प्रकृति या भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिया हुआ है, आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया हुआ है। आश्रितः, दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। और इसके लक्षण क्या है कि किसी ने आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया है? अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं, मैंने भी भगवान के या दिव्य शक्ति का आश्रय लिया है, तो कोई लक्षण होने चाहिए ना। हर अवस्था के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक कोई ना कोई लक्षण होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं लखपति हूं, तो कोई लक्षण दिखाई पड़ने चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं स्वस्थ हूं या बीमार हूं, तो कोई तो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य शक्ति, अंतरंगा शक्ति के अधीन है, तो कौन से लक्षण दिखाई पड़ने चाहिए? हम कैसे जान सकते हैं कि ये वास्तव में ये भौतिक शक्ति के अधीन है या आध्यात्मिक शक्ति के? इसी श्लोक में क्या बताया गया? भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, उनकी सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो दिव्य शक्ति या अंतरंगा शक्ति के अधीन है। उसके कार्य इस शक्ति के अंतर्गत माने जाते हैं, क्योंकि वो कृष्णानुशीलनम करता है। कृष्ण सेवा, कृष्ण के अनुशीलन करना। तो इस बात को यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी कार्य कृष्ण भावना में किए जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में हैं। और इस दैवीं प्रकृतिम, जानते हैं आचार्य क्या कहते हैं इसके बारे में? ये दैवीं प्रकृतिम क्या है या कौन है, बताइए? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। हाँ, तो दैविम प्रकृति विशेष करके कौन है? राधा रानी। इसका मतलब है कि भक्ति ये राधा रानी का क्षेत्र है। राधा रानी की कृपा से ही हमें भक्ति मिल सकती है। भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति लादिनी शक्ति है। तो भक्ति करना या अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना मतलब राधा रानी का आश्रय लेना। लेकिन राधा रानी तो अकेली नहीं है, किनके साथ में है? कृष्ण के साथ। इसलिए राधा कृष्ण या हरे कृष्ण, तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, इसका क्या मतलब है? अनेक अर्थ हैं वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र के, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक मंत्र इस एक अर्थ अवश्य बार बार बताया था। बताइए। हाँ सही है, जैसे बच्चा अपने माँ को बुलाता है वो ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेकिन मंत्र का केवल राधा रानी को हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, हे कृष्ण, हे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया आपके चरण कमलों में स्थित कीजिए, हमें आपके नित्य सेवा में स्थित कीजिए, सदैव हम आपके चरणों में आपकी सेवा में रहें, ये भाव होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करते समय। क्योंकि भक्ति ये सेवा का मार्ग है, जैसे हम सुन चुके हैं, अनुशीलन, ये निष्क्रियता नहीं है कि एक जगह हम बैठे रहेंगे और कुछ करेंगे, नहीं। तो इसमें सेवा भाव का प्राकट्य होना बहुत ही आवश्यक है। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, अगर प्रेम है तो सेवा होना ही है, अगर सेवा नहीं है इसका मतलब है प्रेम नहीं है। तो उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र भी जब हम अभी जप करेंगे तो हमें ये अर्थ मन में रखना चाहिए और इसी भाव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और आगे फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए भाग्यशाली व्यक्ति ही है। आप देख रहे हैं ना, ग्रंथ को देख रहे हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो कि कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। और कृष्ण की कृपा किस रूप में आती है ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में? प्रामाणिक गुरु के रूप में एक सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं। कौन सा श्लोक है बताइए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ, पूरा श्लोक बोलिए जोर से। बहुत अच्छा, तो ये श्लोक सबको पता है ना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद, किस तरह का ब्रह्मांड, किस तरह का भ्रमण करने के बाद? 84 लाख योनियों में कभी हमें पशु का जन्म मिला, कभी मनुष्य का मिला, कभी देवलोक में गए, कभी महरलोक में गए, कभी तपलोक में, कभी ब्रह्मा भी बने, फिर से हम और नीच निम्न श्रेणी की योनियों में आए, और ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो है ये चलता गया 84 लाख योनियों में, कभी इस लोक में कभी उस लोक में, ब्रह्मांड का सारा भ्रमण हमने कर लिया। लेकिन ऐसे ब्रह्मांड का भ्रमण करने वाले करोड़ों करोड़ों जीवों में से विरला ही एक ऐसे भाग्यशाली जीव मिलेगा जिसको कृष्ण की कृपा मिलती है। कैसे पता चलेगा कि किसी को कृष्ण की कृपा मिली है? अगर उसे वैष्णवों का संग मिला है तो, और विशेष करके उसे कोई सद्गुरु प्राप्त हुए हैं तो फिर हम जानते हैं कि कृष्ण की कृपा से सद्गुरु प्राप्त होते हैं, सद्गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। ये है फॉर्मूला, सूत्र है ना, कृष्ण की कृपा से सद्गुरु और गुरु की कृपा से कृष्ण। तो ये सूत्र यहां पर बतला रहे हैं श्रील प्रभुपाद। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत गंभीर है तो कृष्ण उसे वो बुद्धि देते हैं उनकी ओर आने के लिए, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कौन सा श्लोक है गीता का जो भी प्रभुपाद जी, हाँ बहुत अच्छा, तेषाम उनको, किनको किनको बताइए, कौन से श्लोक में कहा है? इसके पहले वाला श्लोक कौन सा है? इसके पहले वाला श्लोक तेषाम कहते हैं ना भगवान, उन लोगों के लिए। तो किन लोगों के लिए? जिनका वर्णन वो पिछले श्लोक में कर चुके हैं। हाँ बताइए, हाँ बहुत अच्छा, पूरा श्लोक बोलिए। मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तस् परस्परम् कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान अपने भक्तों का वर्णन करते हैं, भक्त कौन है इसकी परिभाषा करते हैं, भक्त के गुण क्या हैं, भक्त के लक्षण क्या हैं, इनका वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं कि भक्त वो है जिसके चित्त में केवल मैं ही समाया हुआ हूं। मत चित्ता मत गत प्राणा, और उसके लिए मैं प्राण धन हूं। बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, और नित्य प्रति वो परस्पर जो है अपने आप आपस में केवल मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरी वार्ता बस, और कोई विषय नहीं है उनके लिए। तुष्यंति च रमंती च, मेरी कथा में ही ये लोग रमण करते हैं, इसी में संतुष्टि प्राप्त करते हैं, किसी संसारी विषय में या वस्तु में भोग नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तेषाम, जो ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से अपना जीवन बिताते हैं, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत इस मार्ग में इस इन कार्यों में युक्त हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, बड़े प्रीति से वो भजन करते हैं भगवान का, जो सेवा करते हैं उपासना करते हैं, ददामी मैं देता हूं, बुद्धि योगम ते वो दिव्य बुद्धि मैं प्रदान करता हूं, ये न माम उपयान्ति ते, जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो जब कोई व्यक्ति इच्छुक होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए या इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान उसे ऐसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का जो सारा क्षेत्र है वो प्रत्यक्ष आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में है, अर्थात श्री कृष्ण और सद्गुरु। श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधि तो हैं सद्गुरु, वैसे बलराम जी के हैं क्योंकि बलराम जी आदि गुरु माने जाते हैं, परंतु भक्ति का पथ तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है। तो ये है तात्पर्य अनुशीलनम का, कृष्णानुशीलनम। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये बात स्पष्ट है? किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका इस बात में? अभी प्रश्न है आनुकूल्येन। अब देखिए, अगर कहेगा कोई कि कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम के विभिन्न कार्य बताइए, ये भक्ति है ना कृष्णानुशीलनम, तो बताइए कृष्णानुशीलनम के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं भगवान का सतत स्मरण कर रहा हूं तो ये भक्ति है, भक्ति है। भगवान के बारे में सतत मैं बोलते जा रहा हूं, भक्ति है, भक्ति है। थोड़ा सावधान रहिए, अभी हम कुछ बोलने वाले हैं, जरूरी नहीं है। अगर मैं सतत भगवान का स्मरण कर रहा हूं 24 घंटे, ये जरूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो भक्ति है। अगर मैं 24 घंटे भगवान की कथा बोल रहा हूं तो ये जरूरी नहीं है कि मैं भगवान का भक्त हूं। अगर मैं भगवान को प्रसन्न भी कर रहा हूं मेरे कार्यों से, फिर भी आवश्यक नहीं है कि मैं भक्त हूं। अब आप सोचेंगे ये तो गड़बड़ हो गया, ये कहां, ये पहली बार हम सुन रहे हैं। आज तक तो हम सुनते आए हैं कि भगवान का स्मरण करना, भगवान की कथा कहना, भगवान को प्रसन्न करना, यही भक्ति का सार है। और ऐसा जो लोग करते हैं वो भक्त कहलाते हैं। तो हम लोग तो पहली बार ये सब सुन रहे हैं कि ये केवल ऐसा करने मात्र से भक्ति नहीं कहलाता है। थोड़े उदाहरण देते हैं आपको इसके स्पष्टीकरण के लिए। कंस, कंस का स्मरण कैसा था? कंस किनका स्मरण कर रहा था 24 घंटे? कृष्ण। एक भी क्षण ऐसा बीता जब कंस ने कृष्ण का स्मरण नहीं किया? सोते जागते खाते पीते, ऐसा श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कंस इतना कृष्ण चिंतन में समा गया था कि वो सो नहीं पाता था। बीच रात में उठ जाता था अचानक कृष्ण कृष्ण कह के, और कुछ देखता, कुछ पानी पीना चाहता अंदर कृष्ण को देख, सब जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो तो उसका जीवन कृष्णमय हो गया पूरा, कृष्ण का ही स्मरण करता था वो। लेकिन क्या कृष्ण कंस भक्त कहलाता है? और एक उदाहरण, शिशुपाल। शिशुपाल की क्या विशेषता थी? कृष्ण से द्वेष करता था, और द्वेष से क्या करता था? किसको, किनको? कृष्ण को। मतलब कृष्ण के बारे में बोलता था ना, सतत कृष्ण के बारे में बोले जाना। हाँ, अनपशन बोल रहा था कृष्ण के बारे में, लेकिन विषय क्या था? कृष्ण। कृष्ण के अलावा कोई विषय ही नहीं मालूम था शिशुपाल को बचपन से। ऐसा नहीं कि जब बड़ा हो गया तभी से। भागवत में ऐसा बताया जाता है कि जब से शिशुपाल बच्चा था, कृष्ण के रिश्तेदार का रिश्तेदार था वो, तो बचपन से ही द्वेष था। जैसे कि दुर्योधन को पांडवों के प्रति बचपन से द्वेष था, वैसे शिशुपाल को कृष्ण के प्रति बचपन से ही द्वेष था। और आदत ही पड़ गई थी द्वेष के कारण, कि कृष्ण के बारे में बहुत बुरे शब्द बोलते रहता। आखिर में हुआ क्या, राजसूय यज्ञ में जब ऐसे गालियां देने लगा श्री कृष्ण को, और भीमसेन अर्जुन वगैरह बहुत क्रोध से आग बबूले हो गए थे, लेकिन कृष्ण ने इशारा करके उनको रोका, और अंततः भगवान कृष्ण ने ही अपने सुदर्शन चक्र चलाकर वध कर दिया शिशुपाल की, बल्कि शिशुपाल का उद्धार कर दिया। तो शिशुपाल कृष्ण कीर्तन करता था 24 घंटे, जिस प्रकार कंस कृष्ण स्मरण करता था। लेकिन क्या हम शिशुपाल को भक्त कहते हैं? नहीं। तीसरा उदाहरण, आप में से श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद पढ़ा है, या आपने हिरण्याक्ष का की कथा पढ़ी है, सुना है? हिरण्याक्ष ने किन के साथ युद्ध किया? वराह भगवान के साथ। वराह तो भगवान के अवतार है ना, कृष्ण के अवतार है। हमने यहां कह दिया तो परिभाषा दी है कि कृष्ण मतलब कृष्ण या कृष्ण के अनेकानेक स्वांश रूप। तो वराह देव भी तो स्वांश रूप है, भगवान के अवतार है ना। तो अब वराह देव ने जब श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, जबकि वराह देव ने पृथ्वी लोक को गर्भोदक सागर में गिरा दिया था, और वराह भगवान ने क्या किया, अपने दंश से पृथ्वी माता को उठाया और अपनी कक्षा में अपने संवत्सर में स्थित करना चाहते थे, कर दिया। और उस समय हिरण्याक्ष वो वहां पे पीछा करके आया, युद्ध में ललकार रहा था हिरण्याक्ष भगवान कृष्ण को, بہت انپ شنپ بولنے لگا، دھمکی دی، چیتاونی دی، اور پھر ورہادیو نے پرتھوی کو اپنی جگہ میں اچھی طرح سے رکھا اور پھر مڑے اور ایک بہت دھواں دھار یدھ ہوا دونوں کے بیچ میں. اب یدھ میں بھی بھگوان کو آنند آیا. کبھی کبھی کشتری پربھاؤ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یدھ اچھا لگتا ہے. یدھ میں جانا، اس میں جو رس ملتا ہے وہ اچھا لگتا ہے. کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو جھگڑا کرنا پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں؟ ملے ہیں نا، بنا وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں چھوٹے بات پہ، کچھ ٹرین میں، بس میں، سڑک میں، گھر میں، کہیں بھی بس جھگڑا کرنے شروع کر دیتے ہیں. ان کو تھوڑا رس آتا ہے اس میں. تو کشتری سوبھاؤ کے لوگ الگ ہوتے ہیں. کشتری سوبھاؤ جو یدھ، یو تو رن بھومی پہ یدھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو وشیش آنند آتا ہے وہ جو اس یدھ میں. تو یہ بھی ایک رس ہے. کون سا رس بتائیے؟ کل ہم 12 رسوں کی چرچا کر رہے ہیں، ویر رس. تو ایسے ویر رس میں بھی کشتری سوبھاؤ کے لوگوں کو آنند آتا ہے. تو بھگوان کرشن کو بھی ایسے کبھی کبھی اچھا ہوتی ہے کہ میں بھی یدھ کروں. لیکن گولوک ورنداون میں وہ کون ہے؟ شری کرشن. ورنداون میں کرشن کا پریچے کیا ہے؟ گوالا. وہ کیا کشتری ہے یہاں پر؟ تو کون ہے؟ ویشیہ ہے. ان کا کام کیا ہے؟ گاؤں کو چرانا بس. اور ان کا سوروپ کیسا ہے؟ دکھنے میں کیسے ہیں؟ بڑے ہٹے کھٹے اور کندھوں پہ کیا دھنوش باند لے کر اور گدا ہاتھ میں دھارن کیے ہوئے سب ایسے گھوڑے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا سوروپ ہے برنداون میں کرشن کا؟ ایک سومیہ کومل بالک ہے. دیکھنے سے پتا نہیں لگتا کہ یہ بھگوان ہے. اگر بھگوان شب کہا جاتا ہے تو لوگوں کے من میں ایک وچار آتا ہے کہ بہت ہی رشٹ پشٹ ویکتی ہوگا، جو بہت شکتیشالی ہوگا، جس نے سارے جگت کو دھارن کیا ہوا ہے. پربھوپاد جی کہا کرتے تھے کہ پشچم دیشوں میں جب بھگوان کی تصویر کھینچنی ہوتی ہے تو ایسے ایک ویکتی کی تصویر بناتے ہیں جیسے وہ آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی سفید بال ہے، سفید داڑھی ہے، لمبی داڑھی، اور پرتھوی کو دھارن کیا ہوا ہے اور بےچارا بہت کشٹ اٹھا رہا ہے. پرتھوی کو دھارن کرتے کرتے اس کو بہت کٹھنائی ہو رہی ہے. تو پربھوپاد جی کہتے ہیں ہمارے کرشن اس طرح کے بھگوان نہیں ہے. دیکھنے میں بالکل سندر سوم کومل بالک لگتے ہیں، 15 کے نو یوک، کشور، کشور کہتے ہیں، نو کشور یا نتیہ کشور، اور رادھارانی کشوری ہے. اور جب وہ انت کوٹی برہمانڈوں کو دھارن کرتے ہیں تو ان کو تنک بھی کشٹ نہیں ہوتا، مان کہ وہ کچھ بھی اٹھا نہیں رہے ہیں، کیول اپنے اچھا ماتر سے یہ سب کر سکتے ہیں. تو بھگوان شری کرشن ورنداون میں ایسے نہیں لگتے ہیں. تو گولوک ورنداون میں بھگوان شری کرشن اگر ویرس کا آسوادن کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اپنے گوالوال متروں کے ساتھ مل یدھ کرتے ہیں کبھی کبھی. لیکن سچا یدھ اگر کرنا ہے تو بھگوان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اگر بھگوان کو بیکنٹھ جگت میں رہتے ہوئے یدھ کرنا ہے، کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ ان کو بھوتک جگت میں آنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ وہاں کون یدھ کرے گا بھگوان کے ساتھ؟ آدھیاتمک جگت میں کون یدھ کرے گا؟ تو ان کو یہاں آنا ہے، بھوتک جگت میں آنا ہے. بھوتک جگت میں آنے کس کے ساتھ یدھ کریں گے؟ وہ کوئی ایرے گیرے کے ساتھ تو نہیں کریں گے، کوئی وشیش ویکتی چاہیے جن کے ساتھ یدھ کریں گے. تو ہرنیاکش ہرنیہ کشیپ کون تھے؟ جے وجے. ان کے ویکنٹھ جگت میں دوارپال ہیں، تو یہ کوئی سادھارن لوگ نہیں ہیں. تو بھگوان نے ان کو وشیش کر کے چنا کہ جاؤ تم بھوتک جگت میں جاؤ، کیونکہ بھگوان ویر رس کا آسوادن کرنا چاہتے تھے. اور جب ہرنیاکش اور ہرنیہ کشیپ کے ساتھ انہوں نے یدھ کیا تو بھگوان کو بڑا آنند آیا، ویر رس کا سواد بہت بڑھیا لیا انہوں نے. تو اس درشتی سے دیکھا جائے تو ہرنیاکش نے भगवान को प्रसन्न किया युद्ध करके उनके साथ में। तो आपने अभी भी बताया कि भगवान को प्रसन्न करना मतलब भक्ति है, तो इसका मतलब है कि हिरण्याक्ष श्रेष्ठ भक्त है, सही है ना? नहीं, आप ही ने तो कहा था ना कि कृष्ण को प्रसन्न करना भक्ति है। अभी हिरण्याक्ष ने भगवान को प्रसन्न किया युद्ध करके, तो हिरण्याक्ष क्या हुए? भक्त हुए, सही है ना? सही कि नहीं? नहीं, कंस, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, हालांकि उनका अनुशीलन तो चल रहा था, कृष्णानुशीलनम चल रहा था, परंतु फर्क क्या था? वो भक्त नहीं कहलाते, क्यों? अनुकूल नहीं था भाव उनका, उनका भाव अनुकूल नहीं था, इसलिए उनको हम भक्त नहीं कहते और उनके कार्यों को भक्ति के कार्य नहीं कहते। उसी प्रकार से अब देखिए, भगवान के विरुद्ध कोई कार्य करना, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करना, ये कभी भक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? सही है ना? बिल्कुल ठीक। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करना, ये कभी भक्ति हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है माता यशोदा भक्त नहीं है। क्यों? जब श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी, कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए थे अभी तक, और कृष्ण और दूध पीना चाहते थे, लेकिन चूल्हे पर जो दूध रखा हुआ था वो उबल रहा था, तो माता यशोदा ने क्या किया? कृष्ण को उतार दिया, नीचे रख दिया, और वहां चूल्हे के ऊपर जो दूध था उसको संभालने चली गई, और कृष्ण को क्या हुआ? क्रोध आया, और क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया? मटके तोड़ दिए, और तोड़ के फिर वहां से भाग गए। अब माता यशोदा आई, देखा कि मटके सारे टूटे हुए हैं, मक्खन दही इधर उधर बिखरा हुआ है और कृष्ण नहीं है, तो माता यशोदा ने दो और दो मिलाकर चार बनाया और सोचा कि ये कार्य कृष्ण का है, मटके टूटे हैं और कृष्ण नहीं है, मतलब कृष्ण ने किया है, तो अभी कृष्ण को सबक सिखाते हैं। कृष्ण के पीछे पीछे गई माता यशोदा, बड़े मुश्किल से कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद बांधना चाहती थी, बड़े मुश्किल से बांध लिया और बांध के वहां से चली गई। तो कृष्ण को सबसे पहले कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध माता यशोदा ने कार्य किया। कृष्ण दूध पीना चाहते थे लेकिन माता यशोदा ने नहीं पिलाया, नीचे रखा और दूध के पीछे चली गई। दूसरी बात, कृष्ण भगवान को उन्होंने डांटा, कृष्ण भगवान कृष्ण के ऊपर क्रोध किया। एक भाव उनका कैसा था? डांटने का भाव तो अच्छा नहीं होता है, तो उन्होंने डांटा, और इतना ही नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण को बांध के भी रखा। ये कभी भक्ति हो सकता है? कृष्ण के इच्छा के विरुद्ध है, लेकिन माता यशोदा को हम सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाव अनुकूल था, उनकी इच्छा थी कृष्ण की सेवा करना, उनका प्रेम इतना तीव्र था और संबंध इतना निकट हो गया था दोनों का, कृष्ण और माता यशोदा का, कि माता यशोदा का ये अधिकार था, बल्कि उनके प्रेम के लक्षण थे ये, कि वो कृष्ण को वहां नीचे रख के दूध संभालने चली गई, और जो दूध चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था वो किसके लिए था? कृष्ण के लिए ही था। जिस प्रकार से भक्त जो होते हैं ना, उनको कई सेवाएं रहती हैं कृष्ण के लिए। अभी कोई आरती कर रहा होता है, फिर उसी समय और देखता है कि और कोई सेवा है, चलो वहां ठाकुर जी के लिए हमने कोई दूध उबालने के लिए रखा है, तो कभी यहां और किसी को आरती करने लगा देगा, चलो हमें देखना है, नहीं तो दूध उबल जाएगा, दूध जल जाएगा तो फिर हम कैसे भोग चढ़ाएंगे। तो एक साथ कभी कभी भक्त के सामने कई सेवाएं आ जाती हैं, तो भक्त को चयन करना पड़ता है। ये चयन करना पड़ता है कि ये सेवा करूं या वो सेवा करूं। परंतु दोनों सेवाएं किनके लिए हैं? कृष्ण के लिए। तो भक्त को सोचना पड़ता है कि इस समय जरूरी सेवा कौन सी है, इस समय करना कौन सा चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। उसी प्रकार से माता यशोदा ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अपनी जगह में माता यशोदा बिल्कुल ठीक थी, और माता यशोदा का भाव इतना अनुकूल था, स्नेह से प्रेम से भरा हुआ था, कि उनको ऐसे बर्ताव करना उनका पूरा अधिकार था। और जैसे हमने कहा, बल्कि उनके प्रेम का लक्षण है, प्रमाण है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो माता यशोदा भक्ति नहीं कर रही थी, और हिरण्यकश्यप, कंस और शिशुपाल भक्ति कर रहे थे। इसलिए रूप गोस्वामी ने यहां स्पष्टीकरण के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है। कौन सा शब्द है? अनुकूल ये न, अनुकूल, जो अनुकूल भाव से किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर कोई कहेगा कृष्णानुशीलनम पर्याप्त है, अपने आप में केवल कृष्णानुशीलनम कर दिया तो काफी है, परंतु नहीं, क्योंकि ऐसे भी कोई घटनाएं हो सकती हैं, कोई परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें अनुशीलनम भक्ति नहीं हो, जैसे कि कंस के साथ था। इसलिए ये जो शब्द है अनुकूलेन, इसका प्रयोग होना यहां पे आवश्यक है। तो इससे हम जानते हैं कि भक्ति में केवल भगवान को प्रसन्न करना इतना काफी नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। माता यशोदा का सारा प्राण केवल कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए था, उनका भाव ये था। बाहरी रूप से भले माता यशोदा ने कृष्ण को डांटा होगा, लेकिन कृष्ण उनके प्राण धन थे। कृष्ण के अलावा माता यशोदा किसी और चीज के लिए जीती नहीं थी। तो माता यशोदा का भाव था कि कृष्ण को सुखी रखें, कृष्ण को प्रसन्न करें, कृष्ण की सेवा करें। तो कृष्ण को प्रसन्न करना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव होना भक्त के अंदर। जब भाव रहेगा इस प्रकार का, तो कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा ही, स्वाभाविक है। तो इन दोनों का अंतर आप समझ गए? दो चीजें हैं, एक है कृष्ण को प्रसन्न करना और दूसरा है, हाँ बताइए, कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव रखना या इच्छा रखना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं केवल कृष्ण को प्रसन्न करना ये भक्ति नहीं है, साथ साथ भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव, ये इच्छा होनी चाहिए, तब जाकर उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं, श्रेष्ठ भक्ति कहते हैं। तो इसलिए यहां पर है अनुकूलेन। जैसे जब हिरण्याक्ष वराहदेव से युद्ध कर रहे थे, तो बातों बातों में कृष्ण प्रसन्न हो गए। वराहदेव की तो इच्छा नहीं थी भगवान को प्रसन्न करना, भगवान प्रसन्न हो गए युद्ध करते करते, वो अलग बात है, लेकिन वराहदेव की इच्छा तो ऐसी नहीं थी। इसलिए वराहदेव के कार्यों को भक्ति नहीं कहते हैं, हालांकि वराहदेव को हिरण्याक्ष ने प्रसन्न किया। ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बात कि नहीं? स्पष्ट है ना? हिरण्यकश्यप, अच्छा वराह कह दिया, हिरण्यकश्यप कि मन में इच्छा नहीं थी कि वराहदेव को प्रसन्न करें, लेकिन वराहदेव प्रसन्न हुए युद्ध करते करते, क्योंकि वो वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। तो हालांकि हिरण्यकश्यप ने वराहदेव को प्रसन्न किया, परंतु हिरण्याक्ष की इच्छा नहीं थी, हिरण्याक्ष का यह भाव नहीं था कि मुझे वराहदेव को प्रसन्न करना है, इसलिए हिरण्याक्ष के कार्य को भक्ति नहीं कहते हैं, सही है ना। और दूसरी ओर माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसे प्रतीत होता है कि उन्होंने क्रोधित किया, फिर भी माता यशोदा की भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, उनका भाव कृष्ण को प्रसन्न करने का है। अभी आप समझाइए अनुकूल यह शब्द का तात्पर्य और ये शब्द को यहां क्यों रहना चाहिए। अगर ये शब्द नहीं रहता इस परिभाषा में, भक्ति की परिभाषा में, तो क्या फर्क पड़ता। केवल रूप गोस्वामी कहते कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण भी है अनुशीलन भी है, तो ये अनुकूल शब्द कहने का क्या मतलब है। अभी आप बताइए। हाँ बताइए।
अनुकूल भक्ति नहीं होती, प्रसन्न करना समझाया जाए, भगवान को संतुष्ट करना जरूरी है, भावना जो प्रसन्न करने का।
ठीक है, अच्छी बात। और कोई बताएंगे अनुकूल ये ना के बारे में जब हमने कहा तो आपने क्या क्या समझा। हाँ बताओ परीक्षित। अपनी इच्छा से प्रसन्न करना, ठीक है। बोलो परीक्षित।
तो हमारी अगर इच्छा नहीं होगी तो अगर हम गलत अनुकूल नहीं होंगे इच्छा करना तो होगी तो फिर ऐसा भक्त नहीं मानी जाएगी। तो अगर ये शब्द नहीं होता तो मतलब इसका गलत मतलब निकाला जाता।
अगर हमारे हृदय में वो भक्ति भाव नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, तो अगर हमारे कार्यों से भगवान प्रसन्न हुए भी, फिर भी उस कार्य को भक्ति नहीं कहते हैं।
और ये शब्द नहीं होता तो रक्षा इस शब्द का भी अर्थ नहीं
है। रक्षा
कहा गया है कि इस भक्ति की रक्षा करना
है। हाँ हाँ,
तो कोई भी किसी भी किसी भी माध्यम से जो भी कर रहा है उसको भक्ति समझता है और इस तरह से उसकी रक्षा नहीं हो पाती।
ठीक है, तो भक्ति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, भक्ति के स्पष्टता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। और बताइए, और कोई कहेंगे।
कंस की तरह के नाम पर कंस की तरह।
अगर ये ऐसा स्पष्टीकरण नहीं होता तो कंस जैसे लोग भी भक्त कहलाते। आजकल कंस के छोटे भाई बहुत हैं, है ना, सारे समाज में। तो फिर ऐसे गलत धारणाएं फैल जाती सब जगह। तो भक्ति में भी जब हम भक्त हैं, हमारे हमारे मन में कोई प्रतिकूल भावना नहीं है भगवान के लिए, परंतु हमारे सेवा करते समय अगर भक्ति भाव नहीं रहा तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे उस सेवा से। हालांकि भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें लाभ तो मिलेगा, लेकिन जितना तीव्र जितना शुद्ध हमारा भाव होगा उतना ही अधिक भगवान प्रसन्न होंगे और उतना ही अधिक हम प्रगति कर पाएंगे भक्ति मार्ग में। इसलिए हमारे आंदोलन का नाम क्या है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्ण के भावना का अमृत। सब कुछ इस भाव या भावना के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो ये है अनुकूल ये ना। इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद ने स्वरूप लक्षण, तीन स्वरूप लक्षणों का वर्णन किया है। अच्छा, और एक कागज है उसको लगाएंगे जहां स्वरूप लक्षण और स्वरूप लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे, या इसके पीछे भी हो सकते हैं। देखिए, नहीं इसके पहले, यह नहीं इसके पहले, नहीं कर दिया तो फिर उसमें होगा। देखिए नहीं, ये घुमा दीजिए अभी। नहीं 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 नहीं, उधर उधर होगा, इसमें नहीं है, यहाँ यहाँ होगा। फिर देखिए जहां बताया गया स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण का एक मिनट, इसमें इसके पीछे क्या है देखिए। हाँ यही है ना, यही है। हाँ करिए करिए, हाँ बस, उत्तम भक्ति के स्वरूप लक्षण, हाँ यही है। ऊपर देखिए, उत्तम भक्ति के स्वरूप लक्षण, तो ये मुख्य लक्षण है, तीन हैं। कितने हैं स्वरूप लक्षण, कौन से हैं? अनुशीलनम कृष्ण अनुकूलेन। देखिए हर एक शब्द से विश्लेषण किया है ये जीव गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कितना सुंदर विश्लेषण किया है। तो अब जरा पेज घुमाएंगे, आपको कष्ट दे रहे हैं। अब हम सुनेंगे तटस्थ लक्षण के बारे में। अब यहां परिभाषा देखिए, उत्तम भक्ति की परिभाषा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम हम अभी देख चुके हैं, यह है स्वरूप लक्षण। अब चर्चा होगी तटस्थ लक्षण के, दो हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, ये एक तटस्थ लक्षण है, और दूसरा है ज्ञान कर्माद्यनावृतम। और अन्याभिलाषिता शून्यम की भी का भी हम विश्लेषण कर सकते हैं, तीन शब्द, अन्य, अभिलाषिता और शून्यम। उसी प्रकार से ज्ञान कर्माद्यनावृतम, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। देखिए रूप गोस्वामी पाद ने कैसे चुन चुन के शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो अपने जगह में बिल्कुल उपयुक्त नहीं है या परिपूर्ण नहीं है, एक अक्षर भी कम नहीं है ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपने लिख लिया, जैसे हम सुन चुके हैं स्वरूप लक्षण ये मुख्य लक्षण होते हैं, और तटस्थ लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण वो हैं जो स्वरूप लक्षणों को ज्यादा स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम समझते हैं कि तटस्थ लक्षण वो हैं जिससे साधारण भक्ति और उत्तम भक्ति में अंतर जाना जाता है। साधारण भक्ति अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम है, अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करना। लेकिन साथ साथ जब हम कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम, तो यह उत्तमा भक्ति हो जाती है। तो तटस्थ लक्षण जो है वो अंतर है साधारण भक्ति और उत्तमा भक्ति में। तो साधारण भक्ति जो कि अनुकूलीन कृष्णानुशीलनम है, इसको जब ये दो चीजें जोड़ दिए जाते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादिनावृतम, तो फिर ये उत्तमा भक्ति बन जाता है। बात स्पष्ट है? हुँ? तटस्थ लक्षण क्या करते हैं यहाँ पर? बताइए। साधारण। किस प्रकार से साधारण भक्ति क्या है इस परिभाषा में इसे बोलिए। अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, ये साधारण भक्ति है, जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं जो कार्य, वो भाव रहता है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। परंतु और स्पष्ट करने के लिए कि ये साधारण भक्ति से भी श्रेष्ठ कुछ और है, और वह है भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति। तो कौन से एक्स्ट्रा चीजें हैं, कौन से अधिक चीजें हैं जिनका होने से वो भक्ति साधारण न होकर उत्तमा हो जाती है? तो ये दो हैं तटस्था लक्षण। अन्य अभिलाषिता शून्यम, पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात शून्यम, तो क्या शून्य होना चाहिए? कोई दूसरी अभिलाषा। शून्य का मतलब है अन्य के, अन्य से संबंधित है, अभिलाषा से नहीं। अन्य अभिलाषा शून्य होनी चाहिए, अभिलाषा शून्य नहीं होनी चाहिए, है ना? ऐसे मायावादी लोग होते हैं जो कहते हैं हमारी इच्छाओं को ही, विचारों को ही हमें शून्य करना चाहिए, थॉटलेस, कि हमें बिना कोई विचार बिना कोई इच्छा के रहना चाहिए। फिर प्रभुपाद कहते हैं फिर तो हम पत्थर बन जाएंगे। जीव तो हमेशा कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता है, क्रियाशील रहता है जीव कभी भी। तो जीव की अभिलाषा तो होनी है, जब क्रियाशील है तो जीव की इच्छा होनी ही चाहिए। परंतु शून्य क्या होना चाहिए? अन्य इच्छाएं, अन्य इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। किनके अलावा? भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। यह तात्पर्य है शून्य का। तो शून्यम जो है यह अन्य से संबंधित है, कि अन्य जो इच्छाएं हैं वो शून्य होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो भगवान की इच्छा ये भक्ति है, भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा के अलावा जो भी कोई इच्छा हो उसे हम भौतिक इच्छा कहते हैं। तो भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है? जो कृष्ण के संतुष्टि के लिए किया जाए उसे भक्ति कहते हैं, और जो कृष्ण के संतुष्टि के लिए नहीं किया जाए उसको भौतिक कहते हैं। भक्ति और भौतिक दो अलग चीजें हैं। और बाद में है अभिलाषिता। अभिलाषा शब्द नहीं इस्तेमाल किया यहां पर रूप गोस्वामी पाद ने। अभिलाषा और अभिलाषिता कोई बता सकते हैं क्यों ऐसे? अभिलाषिता क्यों कहा, अन्य अभिलाषा शून्य क्यों नहीं कहा रूप गोस्वामी ने? कोई कारण हो सकता है? द्रौपदी जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने क्या किया? सबसे पहले अपनी रक्षा करने का प्रयास किया। जब सफल नहीं हुई तो अन्यों की ओर देखा, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अंततः द्रौपदी ने क्या किया? कृष्ण का आश्रय लिया, हे गोविंद कह के जोर से पुकारा, और भगवान कृष्ण वहां पर वस्त्र अवतार में प्रकट हुए और द्रौपदी की रक्षा की। तो अब द्रौपदी ने जिस कारण भगवान की रक्षा की याचना की थी वो इच्छा भौतिक है या आध्यात्मिक है?
भौतिक
आप पूछेंगे आज ये ऐसे प्रश्न पूछते जा रहे हमको आज ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। कोई भक्त के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जैसे गजेंद्र, गजेंद्र ने 1000 वर्ष उस मगरमच्छ के साथ युद्ध किया, परंतु इस युद्ध के अंत में, क्योंकि ये युद्ध जल में हो रहा था और हाथी गजेंद्र जल का प्राणी नहीं है और मगरमच्छ जल का प्राणी है, इसलिए मगरमच्छ शक्तिशाली होते जा रहा था और गजेंद्र धीरे धीरे से कमजोर होते जा रहा था। तो अंततः गजेंद्र ने देखा कि जैसे जैसे उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी कि देखा कि अब संभावना है कि मेरी हार हो जाएगी। जब हार होने ही वाली थी, मृत्यु होने ही वाली थी, उस समय गजेंद्र ने क्या किया, कमल का फूल लिया अपने सूंड से और क्या किया, कृष्ण को अर्पण करते हुए क्या किया, केवल अर्पण किया, क्या पुकारा, क्या कहा, जो पूर्व जन्म में उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान के प्रति, उन प्रार्थनाओं को दोहराया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें अभ्यास करना चाहिए भगवान की प्रार्थनाओं को दोहराने में, क्योंकि कब मृत्यु आएगी, कब विकट परिस्थिति आएगी हम कह नहीं सकते हैं। तो जब ऐसी विकट परिस्थिति आएगी तब तुरंत हमें भगवान की प्रार्थनाएं याद आनी चाहिए, विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी एक प्रार्थना है ना। हम अभी अभी आपने बताया हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, ये भी एक प्रार्थना है। तो गजेंद्र ने अपने प्राण की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। तो ये भक्ति है या नहीं है, किसी भौतिक चीज के लिए पुकारा गजेंद्र ने या आध्यात्मिक चीज के लिए, बताइए। तो ये स्पष्ट है कि गजेंद्र अपने लिए कर रहे थे, द्रौपदी अपने लिए कर रही थी कि कृष्ण के लिए कर रहे थे, अपने लिए कर रही थी। तो वो अन्य अभिलाषा हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम द्रौपदी को भक्त मानते हैं कि नहीं मानते हैं, फिर भी मानते हैं, तो क्यों है? कैसे गड़बड़ हो गया, क्यों हुआ ऐसे? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब जीव को यहां इस भौतिक सृष्टि में जन्म मिलता है तो ये भौतिक सृष्टि की रचना ही ऐसे हुई है कि ये तो बारंबार आपातकालीन स्थिति में जीव को डालते रहता है ना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ऐसे होते रहते, और जीते जी भी कितने सारे कठिनाइयां होते हैं। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, अगले कदम में क्या होगा व्यक्ति को पता नहीं, हम कह नहीं सकते कि हम आज घर पहुंचेंगे या नहीं, कह सकते गारंटी देकर कि आज हम घर पहुंचेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं, कोई कह नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये भौतिक जगत में वातावरण ही ऐसा है कि बारंबार जो प्राणी है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी, उनको ऐसे विकट परिस्थितियों में जबरदस्ती डाला जाता है। तो ऐसे परिस्थितियों में जब व्यक्ति को कोई चारा नहीं रहता, कोई उपाय नहीं रहता, अगर वो जोर से भगवान को पुकारता है ऐसे आपातकालीन स्थिति में, ऐसी इच्छा जो है भौतिक सृष्टि का एक ऐसा अंश है जिसको अलग नहीं किया जा सकता भौतिक सृष्टि में रहते हुए, जैसे प्राण की रक्षा करना, यह एक इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति है। तो ऐसे अवस्था में अगर भक्त ने जोर से पुकारा भगवान के लिए, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये दोष नहीं है। ऐसे स्थिति में भगवान को पुकारने से वो भक्त शुद्ध भक्ति के क्षेत्र के बाहर नहीं होता, जैसे द्रौपदी देवी ने किया। एक स्त्री के लिए अपना लाज बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यहां भरी सभा में वस्त्र हरण हो रहा था, ये तो बहुत एक भयंकर बात थी द्रौपदी के लिए। इसलिए जब द्रौपदी ने ऐसे पुकारा तो ये आपातकालीन स्थिति में, और कोई था नहीं द्रौपदी के पास, निस्सहाय भाव से कृष्ण को पुकारा, इसलिए द्रौपदी के शुद्ध भक्ति के ऊपर कोई कलंक नहीं लगा, बल्कि शुद्ध भक्ति का एक आभूषण बन गया। उसी प्रकार से अक्षय पात्र के कथा में भी हम जानते हैं कि द्रौपदी देवी ने कृष्ण को पुकारा, क्योंकि दुर्वासा मुनि आए थे और उनके पास भोजन कुछ था नहीं, और उस समय द्रौपदी देवी ने भोजन कर लिया था, तो अक्षय पात्र भोजन प्रदान नहीं कर सकता था उस समय। तो अगर दुर्वासा मुनि आते तो शायद पांडवों को श्राप दे देते, जिसे बहुत बुरा हो जाता। तो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए द्रौपदी देवी ने पुनः कृष्ण को बुलाया। तो ऐसे अवस्थाओं में भक्त जब कृष्ण को पुकारता है, भले वो अपने लिए क्यों न हो, वो भगवान की सेवा के लिए नहीं है, वो अपने लिए ही बुला रहे हैं भगवान को, लेकिन ऐसे पुकार को, ऐसे इच्छा को भक्ति, शुद्ध भक्ति के विरुद्ध नहीं कहते हैं। हाँ, तो क्यों सरेंडर किया, किस वजह से किया, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरेंडर किया, अपने रक्षा के लिए किया है ना, किनकी मर्यादा, कृष्ण की मर्यादा, अपनी मर्यादा, अपनी मर्यादा। तो उन्होंने जो किया वो कृष्ण के लिए नहीं किया, अपने लिए किया, लेकिन फिर भी वो शुद्ध भक्ति के विरुद्ध नहीं कहलाता है। एक भक्त कह रहे थे, हाँ दोष नहीं आता उसकी शुद्ध भक्ति के ऊपर, ये कलंक नहीं है, ये दोष नहीं है, वो शुद्ध भक्ति के क्षेत्र के बाहर नहीं हो जाता। ऐसे अपनी इच्छा के लिए, अपने कुछ बचाव के लिए अगर वो भगवान को पुकारता है, हाँ वो तो भगवान की योजना है। अगर भगवान भक्त को प्रसिद्ध बनाना चाहे और उसे ऐसी परिस्थिति में डालकर फिर प्रसिद्ध करे, वो भगवान की बात है। लेकिन भक्त की दृष्टि से, भक्त तो अपने लिए भगवान को पुकार रहा है ना, इसलिए ये प्रश्न उठता है कि ये भक्ति है या नहीं है, शुद्ध भक्ति है या नहीं है। एक बार एक भक्त वर्णन कर रहे थे कि वो बंबई की रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। आप में से कितने भक्त बंबई गए हैं, और कितने भक्त आप में से बंबई के शहर के रेलगाड़ियों में सफर कर चुके हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि वहां क्या परिस्थिति होती है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ कि अंदर चढ़ना तो प्राय नामुमकिन है, और अंदर चढ़ जाओ तो बाहर निकलना तो पूरा नामुमकिन है। और अगर पीछे वाला को उतरना चाहे तो आपको भी जबरदस्ती स्टेशन पे निकाला जाएगा। तो एक बार हुआ ये कि हमारे इस्कॉन के एक ब्रह्मचारी हैं, वो बतला रहे थे कि वो किसी स्टेशन पे उतरना चाहते थे और रास्ते में दूसरे लोग थे, उतर नहीं पाए, बहुत धक्का मारा, इधर उधर से, इधर से उधर से, और स्टेशन आ गया, और गाड़ी तो एक स्टेशन पर चंद 15 सेकंड के लिए रुकती है, ज्यादा नहीं। और ये बेचारे सोच रहे थे कैसे निकले, निकले धक्का मार रहे थे, इसको खींचो, उसको धक्का मारो करके, किसी न किसी तरह से वो पैर तो नीचे पड़ गए, लेकिन उनका जो उनकी जो थैली थी कंधे पे लटकी हुई थी वो अटक गई वहां अंदर, और गाड़ी चल पड़ी। तो अब वो आधे नीचे आधे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैंने اتنے جور سے چلایا کرشنا کہ سارے لوگ الگ ہو گئے، میرا بیگ آرام سے نکل آیا. تو اس بھکت کا چلانا یا کرشن کو پکارنا ایک یا شدھ بھکتی تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ اس بھکت نے کرشن کو کرشن کی سیوا کے لیے نہیں پکارا، اپنے لیے پکارا. اس نے سوچا کہ میں اٹک گیا ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، تو کرشن کو پکارا. تو ایسے آپاتکالین اوستھاؤں میں اگر بھگوان کو پکارا جائے تو یہ شدھ بھکتی کے ورودھ نہیں کہلاتا ہے. پرنتو بات یہ ہے کہ یہ عادت نہیں بننی چاہیے کہ ہر چیز کو ایمرجنسی بنا کے بھگوان کے پاس جائیں شاپنگ لسٹ لے کر، ہے نا؟ ایسا نہیں، پھر یہ شدھ بھکتی نہیں کہلاتا. اپنے اندری ترپتی کے لیے بھگوان کے پاس جانا یہ شدھ بھکتی کے کھیتر کے باہر ہے. پرنتو اندری ترپتی کے لیے اچھا نہ رکھ کے ایسے آپاتکالین استھتی میں اگر بھکت اپنی رکشا کے لیے یا اپنی پریوار کی رکشا کے لیے اتیادی ایسے نسہائے بھاو سے وہ بھگوان کو پکارتا ہے یا اپنی رکشا کے لیے اچھا کرتا ہے تو وہ اچھا بھکتی کے ورودھ، شدھ بھکتی کے ورودھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سپشٹ ہوا؟ اس لیے روپ گوسوامی پاد نے یہاں انی ابھیلاشا شونیہ نہیں کہا ہے، انی ابھیلاشتا شونیہ کہا ہے. انی ابھیلاشا شونیہ ہوتا تو دروپدی کی شدھ بھکتی نہیں ہوتی. وہ پھر دروپدی کو ہم شدھ بھکت نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے ایک انی ابھیلاشا رکھی کرشن کی سیوا کے علاوہ. لیکن ابھیلاشتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے اچھاؤں کے باوجود دروپدی کو ہم شدھ بھکت مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھیلاشتا کا مطلب ہے وہ سوبھاو اندر ترپتی کے لیے جس سے ہم بار بار بھگوان کو پکاریں اچھاؤں کی پورتی کے لیے. تو جب ایسے شدھ بھکت جیسے کہ دروپدی بھگوان کو پکارتے ہیں تو وہ اپنے سوبھاو کے ورودھ جاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ بھگوان کو کشٹ دے ہم یا بھگوان کے پاس جا کر ہم کوئی بھوتک چیز مانگیں، نہیں چاہتے. لیکن پرستھتی ہی ایسی وکٹ ہو جاتی ہے کہ ان کو اور کوئی چارہ رہتا نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ایسا کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کا سوبھاو نہیں ہے. یہ اپنے سوبھاو کے ورودھ کاریہ کرتے ہیں اور بھگوان کو پکارتے ہیں اپنے لیے، اپنی رکشا کے لیے. اس لیے یہاں پر ابھیلاشتا شبد کہا گیا ہے، ابھیلاشا نہیں. تو انی ابھیلاشتا شونیم، اور ساتھ ساتھ دوسرا تٹستھ لکشن کیا ہے؟ گیان کرمادناورتم، گیان اور کرم سے بھکتی آورت نہیں ہونا چاہیے. آورت مطلب ڈھکا ہوا. تو گیان کا مطلب کیا ہے یہاں پر، کوئی بتا سکتے ہیں؟ اچھا پھر سے یہ پریبھاشا پڑھیے تو. کوئی پڑھیں گے؟ یہاں جو انی ابھیلاشتا شونیم یہاں شلوک کا انواد کوئی پڑھیے جور سے.
اتما بھکتی یا پرمیشور کے پرتی انانیہ بھکتی اس طرح کی جانے والی بھکتی ہے جو بھگوان کے انکول ہے. اس بھکتی کو کسی بھی باہر منتوے سے مکت ہونا چاہیے اور سکام کرم نرویشیش گیان تتھا انیہ سمست سوارتھ میں اچھاؤں سے رہت ہونا چاہیے.
تو یہاں گیان کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے گیان کا مطلب ہوا نروشیش گیان، ایسا گیان نہیں جو بھکتی میں بہت لابھدائک ہوتا ہے. جیسے ہم جو گیان ابھی پراپت کر رہے ہیں یہ بھی تو گیان ہے نا، لیکن یہ بھکتی میں گیان ہے. وہ گیان جو ہمیں اس نشکرش پر پہنچاتا ہے کہ پرم ستیہ ویکتی ہیں، پرم ستیہ پورن پروشوتم شری کرشن ہیں، اور ان کی بھکتی کرنا، ان کی سیوا کرنا نسوارتھ بھاو سے یہی ہمارا پرم لکش ہے. ایسا گیان جو ہماری اس پرکار کی شردھا کو بڑھاتا ہے، ایسا گیان چاہیے ہمیں، یہ آوشک ہے. परंतु कैसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए? वो दार्शनिक चिंतन, वो मनोधर्म जिसके फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि परम सत्य निराकार है और उस निराकार में लीन होना हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो ऐसा ज्ञान जो है ये गलत है। ऐसे ज्ञान का पीछा करने से हमारी शुद्ध भक्ति ढक जाती है, फिर भक्ति शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए शंकराचार्य का प्रसिद्ध श्लोक है, कौन सा है बताइए? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते दुक्कृण कारणे। कि हे मूढ़, हे मूर्ख व्यक्ति, क्यों अपने व्याकरण और ज्ञान और ये सब चीजों के पीछे पड़ा रहा है? तुम केवल गोविंद को भजो। जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो विशेष करके इन चीजों को बहुत पसंद करते हैं कि उपनिषदों के वाक्यों को लेकर इनका विश्लेषण करेंगे, फिर व्याकरण की इस दृष्टि से उस दृष्टि से टीका करेंगे। तो ऐसा ज्ञान जो कि गोविंद के भक्ति में हमें आगे नहीं बढ़ाता, वो हमारे भक्ति को ढक लेगा और ऐसे ज्ञान को हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो निर्विशेष ज्ञान। और दूसरी बात, कर्म। कर्म मतलब क्या? हमें कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने अनुशीलन में तो देखा है कि अनुशीलन मतलब कार्य तो होना ही चाहिए। तो यहां कर्म का मतलब क्या है? यहां पढ़िए क्या लिखा है यहां पर। सकाम कर्म। सकाम कर्म अर्थात विशेष करके कर्म कांड, वो कार्य जो हमारे कर्म कांड के अनुसार नित्य नियम बताए जाते हैं, प्रायश्चित करना, इसके लिए होम करना, कोई दोष है, नाग दोष है तो वहां नाग मंदिर में जाना कुछ करना, या ये कोई तकलीफ है तो उस देवी की उपासना करना, ऐसे कितनी चीजें हैं जो कर्म कांड के भीतर आते हैं। तो ऐसे कर्म कांड को स्वीकार करने से क्या होता है? भक्ति नष्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी जो पुराने हमारे कर्मकांडी आदत होते हैं वो कभी छूटते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लोग इधर उधर कभी कभी जाते हैं, विशेष करके एक उदाहरण यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी दोनों देते हैं। वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता के श्राद्ध के लिए सारे जितने भी कर्मकांड के कार्य हैं वो किए। हाँ, वो भगवान विष्णु के चरण कमलों में उन्होंने आहुति अर्पण की, उन्होंने प्रसाद भोग रखा और अपने पिता और अपने पितरों के उद्धार के लिए उन्होंने कृष्ण प्रसाद उनको दिया पिंड रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो ऐसा क्या करना उनका शुद्ध भक्ति के विरुद्ध था या नहीं? वैसे तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और उस समय वो तो लीला कर रहे थे, और इस घटना के बाद ही उन्होंने अपने भक्ति भाव को प्रकट किया। वास्तव में चैतन्य भागवत में बड़े विस्तार में इसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। तो जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि अगर कोई भक्त, विशेष करके कोई महान भक्त हो, ऐसे अपने पितरों के श्राद्ध के लिए ऐसे कोई कार्य करता है लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं है इन चीजों के प्रति कि यही परम है, केवल लोगों में एक उदाहरण बिठाने के लिए वो करता है ताकि लोगों में कोई गलतफहमी न हो, इस भावना से अगर करता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो सोचता रहे कि यही सब कुछ है तो फिर उसके भक्ति में ये एक बाधा बन जाएगा। और एक उदाहरण है और वो है ज्योतिष शास्त्र का। ये ज्योतिष शास्त्र वगैरह ये प्रामाणिक है या नहीं है बताइए। सारे आज प्रश्न ऐसे ही है ना, सारे उल्टे प्रश्न है। हाँ
नहीं,
शास्त्र प्रामाणिक है या नहीं है। हाँ प्रामाणिक है ना, क्योंकि ये उपवेद है, वेद शास्त्र है, ये उपवेद शास्त्र तो अवश्य ये एक विज्ञान है। परंतु कर्मकांड भी तो शास्त्र है ना, ये भी तो शास्त्र है। तो ज्योतिष शास्त्र को हम मानते हैं, ठीक है, ये एक विज्ञान है और कभी कभी इसका इस्तेमाल करना भी बुरा नहीं है। जैसे हम अभी थोड़े दिन पहले एक जगह गए थे दक्षिण भारत में, जहां जो वैद्य हमारी चिकित्सा कर रहे थे वो ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग करते हैं चिकित्सा के लिए। वो अपने जातक वगैरह पंचांग खोलकर सब देखते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ आपके प्रकृति के अनुसार, आपके जातक के अनुसार जो है आपकी प्रकृति इस तरह की है और आगे चल के आपको शारीरिक ऐसा कष्ट हो सकता है, इसलिए ऐसी दवाइयां मैं आपको दूंगा ताकि इस तरह से आपका शरीर बना रहे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो इसको इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसे क्या हो जाता है, जब हम उसी में रमण करने लगते हैं, उसी में डूब जाते हैं और हर चीज में यही सोचते हैं कि अरे फिर हमारे इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, ये क्या है, हाँ फिर वो पंचांग देखो, ऐसा करो वैसा करो, तो फिर हमारे भगवान कृष्ण में जो श्रद्धा है वो कम हो जाती है और ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा बढ़ जाती है। ऐसे होता है ना कभी, ये शुभ घड़ी है, राहु काल है, मंगल है, ये है ना, बहुत सी चीजें हैं। तो ठीक है, ये चीजें हैं अपनी जगह में ठीक है, हमें उनका ऐसे प्रयोग करना चाहिए जैसे हम किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। एक छुरी लेते हैं तो छुरी का लाभ है, छुरी का प्रयोग हम कर सकते हैं फल काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अपना ही गला काटे छुरी से तो खराब है। तो उसी प्रकार से अन्य चीजें हैं दुनिया में, भगवान ने बहुत सारे चीजें दिए हैं, आध्यात्मिक चीजें दिए हैं, भौतिक चीजें दिए हैं, जिनका उपयोग हम कर सकते हैं अगर हम जाने कि इनका उपयोग कैसे करना चाहिए। तो ये ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष ये भी एक यंत्र है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा हमें जाननी चाहिए कि अंततः जब हम कृष्ण के शरण में आए हैं तो हमारे नक्षत्र, हमारे तारे वगैरह ठीक है अपने जगह में, वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा है कि अभी कृष्ण हमारे कंट्रोलर हैं, हमारे नियंता हैं, हम कृष्ण के नियंत्रण में हैं, इसलिए कृष्ण सब कुछ संभालेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र आजकल ये भी बहुत प्रसिद्ध है, बुरा नहीं है, ये भी प्रामाणिक शास्त्र है। और जैसे हम कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, तो हम वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी शिल्प शास्त्र का एक अंश है। जिस प्रकार से अगर कोई इमारत बना रहे हैं तो इंजीनियर को बुला के सही सलामत सब करना पड़ता है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि ये भौतिक ज्ञान है, हम केवल हरे कृष्ण जप करके हम ईंटें लगाएंगे, लेकिन कैसे सीमेंट बनाना है, क्या करना है, हम नहीं जानेंगे ठीक से तो इमारत खड़ी नहीं होगी, और होगी भी तो जल्दी से टूट जाएगी। तो भौतिक ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इस ज्ञान का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इस भौतिक ज्ञान को ही हम श्रेष्ठ समझने लगे, इसी में श्रद्धा हमारी ज्यादा बढ़ जाए और कृष्ण को भूल जाए। तो तो ऐसे चीजों में वास्तु शास्त्र का इस्तेमाल करना कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा है। परंतु ऐसा नहीं कि कृष्ण को भूलकर हम सोचते रहे कि हम ये इस चीज को यहां करेंगे, उस चीज को वहां करेंगे, सारा परिवर्तन, ये दीवार तोड़ दो, ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बहुत सारी चीजें बताई जाती है। अगर वो प्रैक्टिकल है तो भक्त को करना चाहिए, करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इन चीजों के पीछे बस समझाते रहें और कृष्ण को भूल जाएं। उसी प्रकार से जो भी भौतिक चीजें हैं, जैसे चिकित्सा भी समझ लीजिए, क्योंकि ये कृष्ण की संपत्ति है हमारा शरीर, तो इस शरीर की रक्षा के लिए हमें अवश्य कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। परंतु हमें समझना चाहिए कि दवाइयों को, डॉक्टरों को अपनी अपनी सीमा है। वैद्यो नारायण हरि ही, सच्चे वैद्य कौन है? नारायण और हरि। औषधो हम, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मैं ही औषध हूं। तो औषध के भीतर जो शक्ति है हमें ठीक करने की, वो कौन है? कृष्ण है। प्रहलाद भी कहते हैं भागवत में कि अगर कोई आदमी अच्छे खासे नौके में चल रहा है समुद्र के भीतर, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो डूबेगा नहीं। कोई छोटा बच्चा है, उसके माता पिता उसको बहुत प्रेम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कोई गारंटी है कि उसको कुछ होगा नहीं। उसी प्रकार से प्रहलाद कहते हैं कि एक मरीज है, उसको रोग हुआ है, अच्छा वैद्य है, अच्छी दवाइयां हैं, फिर भी ये कोई गारंटी नहीं है कि वो मरीज ठीक होगा। तो हमारा ठीक होना ये कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर है। दवाइयां ले लें भले, कोई बात नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि कृष्ण से ज्यादा हम दवाइयों में श्रद्धा बढ़ाएं। राजा कुलशेखर अपने मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं, इदम शरीरम शत संधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधिम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। वो कहते हैं कि ये शरीर क्या है, इदम शरीरम शत संधि जर्जरम, जितने भी संधियां हैं शरीर के वो बिल्कुल अकड़ जाते हैं, और जैसे बुढ़ापा आ जाता है तो बहुत तकलीफ होने लगती है संधियों में, उठना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है। पतत्यवश्यम, और ये शरीर का नाश निश्चित है, पतन होना निश्चित है। परिणाम अपेशलम, शरीर का सौंदर्य भी क्षणिक है, केवल थोड़े सालों के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है जब बुढ़ापा आ जाता है। तो किम औषधिम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते, हे दुर्मति, हे व्यक्ति जिसकी मति बिगड़ गई है, हे मूढ़ व्यक्ति, क्यों केवल बारंबार औषध के लिए, दवाई के लिए याचना कर रहे हो? ये दवाइयां क्या करेंगे तुम्हारे लिए? तो क्या करो, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, ये दवाई लो, कुछ लेना चाहते हो तो कृष्ण रसायन, कृष्ण के नाम का अमृत ले लो, और इससे आने वाले कोई तुम्हारी बीमारी नहीं होगी, मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त को दवाई नहीं लेनी चाहिए, अवश्य लेना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि डॉक्टर को ही भगवान समझे और दवाई को ही भगवान समझे और भगवान के ऊपर निर्भर होना भूल जाए। तो दुनिया में रहते हुए भौतिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए हमें इन चीजों को, हमारे भक्ति को ढकने नहीं देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। ये स्पष्ट है ना? इसलिए यहां शब्द का उपयोग किया हुआ है आवृत, अनावृत। तो हमारी भक्ति ऐसे ज्ञान से, कर्म ज्ञान कांड से, कर्म कांड से आवृत नहीं होना चाहिए। तो जो ज्ञान और जो भक्ति ऐसे ज्ञान से, ऐसे कर्म से आवृत नहीं है, वो शुद्ध भक्ति कहलाता है। ठीक है? और इसलिए यहां पर कितने सुंदर ढंग से रूप गोस्वामी ने एक संपूर्ण परिभाषा दी है। और केवल ज्ञान और कर्म नहीं, आदि भी शब्द का प्रयोग किया है। आदि मतलब क्या? ज्ञान कांड कर्म कांड के अलावा अगर ऐसे भी कोई चीजें हों जिनको हम स्वीकार करते हैं और वो हमारे भक्ति को ढक देती हैं, तो ऐसे चीजों को भी हमें त्याग देना चाहिए। उदाहरणार्थ जैसे अति वैराग्य, सांख्य योग आदि। ज्यादा जरूरत से ज्यादा वैराग्य होना यह भी भक्ति के लिए बाधक है। अति तपस्या करना यह भी भक्ति के लिए बाधक है। थोड़ा वैराग्य थोड़ी तपस्या आवश्यक है, लेकिन सीमा से बाहर जब हम जाते हैं हमारे वैराग्य और तपस्या में, तो भक्ति के बाधक बन जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु शिवास आंगन में कीर्तन करते थे तो सारे दरवाजे बंद हो जाते थे और बाहर के किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं रहती थी वहां पर। तो एक बार श्रीवास ठाकुर के पास एक ब्रह्मचारी आए जो केवल दुग्धाहारी थे। दुग्धाहारी मतलब समझते हैं ना, जो केवल दूध पीते थे, बस उनका वही आहार था। इतने तपस्वी, अनाज नहीं खाते थे, कुछ नहीं और खाते थे। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी जो है उनको बहुत प्रार्थना कर रहे थे, ये भक्त नहीं थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु के कार्यों से आकृष्ट हो गए थे। वो चाहते थे कि मैं भी देखना चाहता हूं महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य। तो श्रीवास ठाकुर के मन में करुणा उत्पन्न हुई, उन्होंने इस ब्रह्मचारी को छुपा दिया उनके घर में। और जब महाप्रभु कीर्तन करने वाले थे, कीर्तन तो शुरू किया और फिर कीर्तन शुरू करने के बाद रुक गए और कहा कि आज वो आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन में, कुछ तो गड़बड़ी है। अरे श्रीवास, तुमने किसी और को तो यहां छुपाया नहीं है ना, जो यहां होना नहीं, जिससे है यहां होना नहीं चाहिए, जो अयोग्य व्यक्ति है उसको तो यहां नहीं लाए हो ना। तो श्रीवास ठाकुर तो कैसे झूठ बोल सकते थे। तो उन्होंने कहा, हां प्रभु, यहां ये ब्रह्मचारी है। तो तुरंत वो ब्रह्मचारी बाहर आया, दंडवत किया उसने। और श्रीवास ठाकुर ने कहा कि नहीं, आप क्रोधित नहीं होइए, ये बहुत बड़ा तपस्वी है, केवल दुग्धाहारी है, उसने जीवन में केवल दूध पिया है, तो इतनी तपस्या करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, किसी को पता है? हाँ बताइए। बहुत अच्छा। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि केवल दूध पीने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति करनी होगी तो वैष्णवों का दास बनना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, बल्कि शास्त्र में बताया है कि गाय का दूध पीने से बुद्धि ठीक हो जाती है, बुद्धि और सूक्ष्म हो जाती है। बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों के आधार पर कि गाय का दूध पीने से बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है, उसकी विवेक बुद्धि अच्छी हो जाती है। इसलिए यहां हम ये सब चर्चा कर रहे हैं गौशाला के पास में ही, यहां गाय और बैलों के संग में बैठकर। तो इस प्रकार से ऐसे भी कोई और कार्य नहीं होने चाहिए ज्ञान और कर्म के अलावा जिनसे हमारी भक्ति ढक जाए। इसलिए ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो ठीक है, और इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने संपूर्ण परिभाषा की है भक्ति की। और अंततः रूप गोस्वामी एक और श्लोक नारद पंचरात्र से देते हैं, इसको घुमाएंगे जरा। भक्ति की दूसरी परिभाषा जो पहले परिभाषा के समान ही है, दोनों में कई समानताएं हैं। तो आइए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम् भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम् भक्तिरुच्यते। आप बोलिएगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम् भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम् तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम् भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम् भक्तिरुच्यते। माताजी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश उच्यते सेवनम् भक्तिरुच्यते। माताजी, आप कोई बोलेंगे? माताजी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम् भक्तिरुच्यते। अच्छा, तो किताब में से, ग्रंथ में से कृपया इसका अनुवाद कोई पढ़िएगा जोर से।
भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी, भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों का लगाना। जब आत्मा ब्रह्म की सेवा करता है तो दो तटस्थ प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती
है। बहुत अच्छा। तो ये रूप गोस्वामी बात दूसरी परिभाषा दे रहे हैं भक्ति के। भगवान कृष्ण को यहाँ कौन से शब्द से संबोधित किया गया है? ऋषिकेश। ऋषिका मतलब इंद्रियां, और ईश मतलब नियंत्रण करता, नियंता, जैसे ईश्वर कहते हैं ना, तो ईश धातु। तो ऋषिका ईश दोनों शब्द को मिलाकर शब्द हुआ है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश श्री कृष्ण का नाम है और ये बतलाता है कि श्री कृष्ण हर प्राणी के, हर जीव के इंद्रियों के स्वामी हैं। और इंद्रियों का प्रयोग केवल इंद्रियों के स्वामी के लिए किया जाना चाहिए। ऋषिकेन मतलब ऋषिकों के द्वारा, ऋषिकेश सेवनम, तो कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तो ऋषिकेश है कृष्ण। देखिए, अभी हम दोनों श्लोकों की समानता को बतला रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दोनों श्लोकों में से, अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक और सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम श्लोक। तो ऋषिकेश है कृष्ण, ऋषिकेन सेवनम मतलब अनुशीलनम। और यह बताया हुआ है सर्व उपाधि निर्मुक्तम। यहां इस समय हम भौतिक भावना में हैं, शारीरिक भावना में, जिसको देह बुद्धि कहते हैं। इसमें हम अपने आप को अलग अलग नामों से जानते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल में पढ़ा था, मेरे माता पिता ये हैं, मैं इस घर में रहता हूं, मैं इस कंपनी में ये डायरेक्टर हूं, मैं ये मंत्री हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मनुष्य हूं। तो ये सब भौतिक उपाधियां हैं जो केवल हमारे शरीर से संबंधित हैं, ये हमारे आत्मा से संबंधित नहीं है। तो जब व्यक्ति ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम करता है, अपने इंद्रियों को सदैव भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगाता है, तो धीरे धीरे से क्या होने लगता है, सारे उपाधियों से वो मुक्त होने लगता है, झूठे उपाधियों को त्यागने लगता है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। साथ साथ तत्परत्वेन, तत्परत्वेन का मतलब है कि कृष्ण को ही अपना अंतिम उद्देश्य मानकर उनकी सेवा करना भक्ति भाव से। तो यह है आनुकूल्येन, तत्परत्वेन। और निर्मलम, निर्मलम का मतलब है कि शुद्ध भाव से, निर्मल, जहां कोई मल नहीं है, हृदय बिल्कुल शुद्ध है, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, शुद्ध है। तो यह है अन्याभिलाषित शून्य के श्लोक में ज्ञान कर्माधिनावृतम। अभी आप समझ गए दोनों श्लोकों की हम तुलना कर रहे हैं। तत्परत्वेन श्री कृष्ण को अंतिम उद्देश्य जानकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करना, उनको मानना। बड़े भक्ति भाव उनके प्रति रखना, तत्परत्वेन। तो ये श्लोक प्रभुपाद कई बार कहा करते थे, आपने सुना होगा प्रभुपाद जी के प्रवचनों में कभी कभी ये श्लोक दोहराते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे यहां कह रहे हैं कि हमारे बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां केवल हमारे इंद्रियों के जो मांगे हैं, शरीर के मांगे हैं, उनको पूरे करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब हमारी इंद्रियां कृष्ण को संतुष्ट करने में लगाए जाते हैं तो उनको भक्ति कहते हैं। कोई बड़ी प्रैक्टिकल बात है। रूप गोस्वामी यहां पर प्रैक्टिकल बात कहते हैं कि भक्ति क्या चीज है, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाओ। और ऐसा करने से धीरे धीरे से व्यक्ति जानने लगता है कि ये सब मेरे झूठे संबंध हैं, झूठे उपाधि हैं, और मेरा जो नित्य स्थान है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में है, मेरा संबंध नित्य रूप से श्री कृष्ण के साथ है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि मेरा स्वरूप है कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूं, वो जान लेता है। और इस प्रकार से शुद्ध उद्देश्य से वो कृष्ण भावनामृत के निर्मल स्थिति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये भूमिका भक्ति रसामृत सिंधु की अब समाप्त हो गई। अब अगले प्रवचन से हम पहला अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रश्न है? हाँ परेश।
तो
गजेंद्र का उदाहरण जो है ये वास्तव में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन इस श्लोक में आता है। गजेंद्र जिस समय उसने प्रार्थना की भगवान को, उस समय वो शुद्ध भक्त नहीं था, इसलिए वो सकाम भक्तों में आता है। सकाम भक्त क्यों, हम इसकी चर्चा आगे चल के करेंगे। चार प्रकार के भक्त जो भगवान के पास आते हैं, आर्तो, आर्त मतलब जो पीड़ित है, तो गजेंद्र पीड़ित अवस्था में थे इसलिए श्री कृष्ण को पुकारा। तो वहां गजेंद्र के आने का कारण भौतिक था, इसलिए उनको शुद्ध भक्त नहीं मानते, क्योंकि पहले वो भक्ति के कार्यों में नहीं लगे हुए थे इस जीवन में, हाथी के जीवन में, लेकिन द्रौपदी लगी हुई थी भक्ति के कार्यों में, इसलिए द्रौपदी के पुकारने में और गजेंद्र के पुकारने में थोड़ा अंतर है। गजेंद्र का उदाहरण देने में केवल हम ये बतलाना चाहते थे कि कैसे कभी कभी भक्त जो है वो ऐसे आपातकालीन स्थिति में भगवान को पुकारता है फिर भी भक्त कहलाता है, और द्रौपदी जैसे भक्त जब पुकारते हैं जो शुद्ध भक्त हैं और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बुलाते भगवान को, तो वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं, भले ही उन्होंने ऐसे भगवान को अपनी रक्षा के लिए क्यों ना बुलाया हो। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, भावना को जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भावना होना चाहिए। भावना को व्यक्त करने का की प्रक्रिया क्या है, जो विधियां हमें बताई गई हैं हमारे भक्ति मार्ग में उनको हमें करते रहना चाहिए। साथ साथ ये तो बाहरी चीज है, जैसे हम आरती उतार रहे हैं भगवान की, या हम मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, या हम जप कर रहे हैं, ये तो बाहरी कार्य है, लेकिन हृदय कहाँ है, मन कहाँ है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा भाव ऐसे होना चाहिए कि बाहरी कार्य भगवान के लिए करते समय साथ साथ जो है चित्त उस सेवा में अर्पित होना चाहिए, तब वो उस सेवा से भगवान अधिक प्रसन्न होंगे। तो मुख्य बात यह है कि जो भी हम भगवान के लिए सेवा करते हैं बड़े भक्ति भाव से करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रख के करना चाहिए। ठीक है, और कोई बात? हाँ, मत हमारे संसार के संबंधों को कैसे हम कृष्णमय बना सकते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के, ये समझ के कि ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे माता पिता नहीं है, ये मेरे पति पत्नी नहीं है, भाई बहन नहीं है, ये सब कृष्ण के संपत्ति हैं, मेरे संपत्ति नहीं है। कृष्ण ने केवल मुझे ऐसे स्थान में रखा है जहां मेरी सेवा है इनके प्रति, कृष्ण मुझे ये सेवा दी है या ये जिम्मेदारी दी है इनकी सेवा करना, इनका देखभाल करना या जो भी कुछ करना, तो ये कृष्ण की संपत्ति है। और इस प्रकार से हमारे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये भी इसका अंग है। और अपने वातावरण को कृष्णमय बनाना इन व्यक्तियों के संग में, अगर हमारे कोई मित्र हैं तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे ये संबंध उस मित्र के साथ कृष्णमय है, जब उस व्यक्ति के साथ कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगेंगे। अगर उस मित्र के साथ हम सिनेमा देखने गए तो फिर वो कृष्णमय संबंध नहीं हो जाता है, क्योंकि उस समय उस संबंध में कृष्ण केंद्र में नहीं है। तो कृष्ण को केंद्र में रखने का मतलब है कि हमारे कार्य जो हम परस्पर करते हैं वो कृष्ण से संबंधित होने चाहिए, और दूसरी बात कि भावना भी वैसे ही होनी चाहिए। ठीक है परीक्षित।
तो जैसे आपने कल 5 रसों के बारे में बताया था, तो रस को कैसे डेवलप करते हैं, मतलब अगर हमें भगवान से संबंध बनाना है तो कैसे दास के रूप में हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के इस पे कैसे पहुंच सकते हैं।
इस समय प्रभुपाद जी बताते थे, प्रश्न ये है कि 5 रसों का वर्णन हुआ है तो हम कैसे इन 5 रसों का विकास कर सकते हैं हमारे हृदय में। इस समय इतना कहना पर्याप्त है कि हमारा एक ही रस है। कौन सा रस है? किन का दास? किन का दास? दासानुदास, वैष्णव दासानुदास या गुरुदास, मायादास नहीं। दुनिया में लोग सभी मायादास हैं इसलिए उदास हैं। मायादास सदा उदास और कृष्णदास बिंदास, है ना? तो दास तो सभी हैं, चाहे नास्तिक हो चाहे भक्त हो, सभी दास हैं। तो हमें किन का दास होना है? गुरुदास होना है। तो हमारा जो रस इस समय है केवल दास्य है, भगवान के भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, गुरुजनों के प्रति। और आगे चल के जैसे यह दासत्व की भावना का हम अनुशीलन करते रहेंगे, वैसे वैसे जब हम उन्नत स्तर पर पहुंच जाएंगे तो फिर भगवान हमको साक्षात्कार देंगे कि वास्तव में भगवान के धाम में हमारा क्या रस होगा भगवान के साथ। वो तो बहुत ऊंची बात है, इसलिए उसकी परवाह हम इस समय नहीं करें। अभी हमें क्या परवाह करनी चाहिए? वैष्णव दास गुरुदास कैसे अच्छा बने, फिर आगे चल के सब बात बन जाएगी, सब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ शरद बिहारी प्रभु। अन्य अभिलाषा और अन्य अभिलाषिता के बीच में जो अंतर है वो समझ नहीं आया, तो आप में से कोई बताइए अभी। इसके ऊपर चर्चा की थी ना हमने। हाँ बताइए आप में से कोई।
अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषा संबंधित है स्वयं से।
अभिलाषा से शुरू कीजिए, केवल अभिलाषा और अभिलाषिता इसके इससे शुरू कीजिए तो सरल हो जाएगा आपका आपकी व्याख्या।
अभिलाषा, अगर मैं कुछ अभिलाषा रखता हूँ तो बहुत सारे अभिलाषा हो सकती है, हो सकता है सर्टिफिकेशन पे एक अभिलाषा। और जब हम अभिलाषिता बोलते हैं तो अभिलाषिता सेल्फ सर्टिफिकेशन से नहीं मिल खाता है, खुद के लिए तो होती है लेकिन उसमें इंद्र तृप्ति का।
उल्टा बोल रहे हैं उल्टा बोल रहे हैं। और कोई बताइए। हाँ बोलो परीक्षा। हाँ बताइए। बहुत अच्छा। तो अभिलाषा मतलब समस्त अभिलाषाएं, बहुत सारे जितने भी अभिलाषा इच्छाएं हो सकती हैं उनमें सारे आ जाते हैं। अच्छे अभिलाषा, जो प्रामाणिक अभिलाषा, बुरी अभिलाषा, सब आ जाते हैं। अगर रूप गोस्वामी अन्य अभिलाषा शून्य कहते शुद्ध भक्ति के लिए, तो फिर द्रौपदी देवी शुद्ध भक्त नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि द्रौपदी और जैसे अन्य भक्तों में भी ऐसी इच्छाएं कभी कभी आपातकालीन स्थिति में उभर आई उनके हृदय में अपनी रक्षा के लिए, लेकिन ये बहुत ही विरला ऐसे होता है उनके जीवन में। हालांकि ये कृष्ण से डायरेक्ट संबंधित नहीं थे ये इच्छाएं, परंतु ऐसे भौतिक जगत में रहते हुए बार बार ऐसे आपातकालीन स्थितियां आती रहती हैं जीवन में, इसलिए ऐसे अवस्थाओं में जब हम भगवान को बुलाते हैं पुकारते हैं तो ये शुद्ध भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। तो अगर अन्य अभिलाषा शून्य कहते तो फिर ऐसे जो इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी अवस्था में जो भगवान को बुलाया है फिर उसको भक्ति नहीं कह सकते थे हम। इसलिए उन्होंने कहा है अन्य अन्य अभिलाषिता कि इसमें केवल इंद्र तृप्ति के इच्छाएं वर्जित हैं। ठीक है, वो आदत नहीं होनी चाहिए कि बार बार भगवान को हम बुलाएं, हर चीज के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान को पुकारें, वो ठीक नहीं। वो ऐसा करने से वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता है। हाँ, स्पष्ट हो गया? ठीक है, ज्यादा कठिन हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन श्लोक का तात्पर्य है क्या? श्लोक का अनुवाद है, श्लोक का अनुवाद है और तात्पर्य है, लेकिन ये श्लोक नहीं है। अभी भक्ति रसामृत सिंधु प्रभुपाद जी के ग्रंथ में संस्कृत श्लोक नहीं है, लेकिन उसका अनुवाद है और तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है। इसलिए अनुवाद जो है हमने पढ़वाया किसी से, ग्रंथ में से पढ़ा किसी ने, याद है ना? तो ग्रंथ में लिखा हुआ है इस श्लोक का अनुवाद। ठीक है, ज्यादा कठिन तो नहीं हुआ ना आज? मुश्किल हुआ? हाँ, समझ में आया आप सब? ठीक है, थोड़े शांत लग रहे हैं सब लोग, ज्यादा भारी हो गया लगता है आज, है ना? भारी तो नहीं हुआ ना? ठीक है, अभी जाते जाते अन्य अभिलाषा अभिलाषिता के बारे में चिंतन करते जाइए। अभिलाषा अभिलाषिता, और इन दोनों श्लोकों को अवश्य आप कंठस्थ कीजिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम और सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, भक्ति की परिभाषा है। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कल शुक्रवार है ना, तो कल हम क्लास नहीं करेंगे, बल्कि शनिवार को हम दो क्लास करेंगे, चलेगा? क्योंकि सुबह शनिवार के सुबह को गौर नारायण महाराज नहीं आएंगे, क्योंकि शनिवार उनका क्लास नहीं है, और कल कोई काम के सेवा की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। कल हम लोग मंदिर में इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। तो कल शाम क्लास करने के बजाय परसों सुबह या शनिवार को सुबह हम क्लास करेंगे। ठीक है, और शाम को जो होना वो तो होगा, जैसे शाम को 3:30 से है कि भगवत गीता है? नहीं है ना? अच्छा, ऑफ है, सैटरडे है। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु है मेरे, मुझे जो बताया गया। हाँ, रविवार को नहीं है, तो शनिवार को दो क्लास सुबह और शाम, सुबह को 10:30 से 12:30 और फिर शाम को 3:30 से 5:30। वैसे और ज्यादा भी समय ले लेते, लेकिन हमारे पास इतने दिन नहीं है, इसलिए हम थोड़ा हर दिन एक क्लास करने का शेड्यूल उसको बनाए रखना चाहते हैं, नहीं तो समाप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा होगा या आप आएंगे? हाँ, वैसे भी आप दो क्लास कर रहे हैं ना दिन में, सुबह भगवत गीता और शाम को भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी अगर आपके समझ को आपको और परिपक्व बनाना है तो जाके किसी और भक्त को समझाइए जो आपने सुना है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जाके सिखाइए। श्रवण करने का सबसे अच्छा तरीका है जाके कीर्तन कीजिए। फिर आप समझ पाएंगे कि आप कितने अच्छी तरह से समझे हैं। और फिर उस समय कोई गड़बड़ी होती है तो अगले दिन आके आप पूछ सकते हैं कि हाँ इसके बारे में हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा। ठीक है, हरे कृष्णा।